नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। अवैध नौकरियों का झांसा देकर म्यांमा ले जाए गए 27 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सामग्री नियंत्रण मानकों की कमियां स्वीकारी, भारतीय कानूनों के अनुपालन का आश्वासन दिया। ईरान के अधिकारियों ने अब तक के सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज वडोदरा में। अवैध नौकरियों का झांसा देकर म्यांमा ले जाए गए 27 नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया है। इन्हें साइबर धोखाधड़ी के लिए मजबूर किया गया था। ये नागरिक कल दिल्ली पहुंचे, जहां से इन्हें उनके गृहनगर भेज दिया गया। म्यांमा में आम चुनाव के दूसरे दौर का मतदान जारी है। पिछले 5 वर्ष में देश में पहला आम चुनाव कराया जा रहा है। दूसरे दौर के मतदान के लिए देश के कुल 330 नगरों में से आज 100 में मतदान हो रहा है। उन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां हाल के महीनों में संघर्ष हुए हैं। सशस्त्र संघर्ष के कारण 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 28 दिसंबर को पहले दौर में 102 शहरों में मतदान हुआ। चुनाव का अंतिम दौर 25 जनवरी को होगा। सशस्त्र संघर्ष के कारण 65 स्थानों पर मतदान नहीं कराया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती मानते हुए कंटेंट मॉडरेशन यानी सामग्री प्रबंधन मानकों में त्रुटि की बात स्वीकार की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने व्यवहार्य विधानों और विनियमों के अनुरूप काम करने का वादा किया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकसित सामग्री सहित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री आने के बाद ये मुद्दा उठा है। छानबीन के बाद लगभग 35,000 सामग्री ब्लॉक की गई और 600 से अधिक अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं। एक्स ने कहा कि वो अब अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अश्लील सामग्री की अनुमति नहीं देगा। ब्रिटेन में विपक्षी प्रीति पटेल ने सरकार से बांग्लादेश में शांति बहाल करने और अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का उपयोग करने का आग्रह किया है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के भारतीय मूल के सांसद ने विदेश मंत्री यवेट कूपर को पत्र लिखकर सरकार से सदन में इस मुद्दे पर बयान देने का आग्रह किया। प्रीति पटेल ने अपने पत्र में पिछले 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या की खबरों का हवाला दिया। ब्रिटिश हिंदू समूह बंगाली हिंदू आदर्श संघ के नेतृत्व में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ लंदन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमरीकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट आतंकी गुट को निशाना बनाते हुए हवाई हमले करने का दावा किया है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पिछले वर्ष दिसंबर में शुरू इस अभियान में सीरियाई सुरक्षा बल अमरीका का साथ दे रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा सीरिया में अमरीकी सैनिकों के मारे जाने के बाद यह अभियान शुरू किया गया है। अमरीकी सेना ने बताया कि 13 दिसंबर की घटना में 2 अमरीकी सैनिकों के अलावा एक भाषांतरकार भी मारा गया था। अमेरिका के दूतावास मामलों के ब्यूरो ने वेनेजुएला में मौजूद अपने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होते ही तुरंत देश छोड़ने को कहा है। ब्यूरो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वेनेजुएला में सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है और सशस्त्र विद्रोही गुटों द्वारा सड़कें अवरुद्ध करने और वाहनों की तलाशी लेने की खबरें हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीरों के सम्मान में आज शौर्य गाथा में भाग ले रहे हैं। इसके बाद वे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी सोमनाथ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो राजकोट में सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के लिए आयोजित 2 दिन के जीवंत गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट।
सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ महादेव का मंदिर इतिहास, अटूट विश्वास और अजय भावना की एक अनूठी गाथा है। सन 1026 में महमूद गजनवी ने इसकी संपत्ति लूटी और गर्भगृह को नष्ट कर दिया। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रभास पाटन के खंडरों का दौरा किया और मंदिर को उसके प्राचीन गौरव के साथ फिर से बनाने का ऐतिहासिक संकल्प किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान चालुक्य शैली के मंदिर का निर्माण हुआ। विकास का यह सफर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 1,500 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। राजकोट में क्रेता और विक्रेता बैठक के दौरान 1,800 से अधिक व्यापार बैठक होनी है। सम्मेलन में अमेरिका, यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया सहित 16 से अधिक देशों के अभियांत्रिकी, कृषि और कपड़ा क्षेत्र से संबंधित 110 खरीदार हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री राजकोट से अहमदाबाद जाएंगे और वहां सेक्टर 10A में महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन तक अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के शेष कार्य का शुभारंभ करेंगे। ईरान के अधिकारियों ने सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए और अधिक बल प्रयोग करने का संकेत दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अशांति के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया और शासन प्रणाली की रक्षा करने का संकल्प लिया। पूरे ईरान में हिंसा की खबर है, हालांकि इंटरनेट बंद होने के कारण स्थिति का आकलन मुश्किल है। एक रिपोर्ट।
राजधानी तेहरान के कई क्षेत्रों तथा उत्तर में रश्त, उत्तर पश्चिम में तबरेज और दक्षिण में शिराज तथा करमान सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। ईरान के अंतिम शाह के निर्वासित पुत्र और विपक्षी नेता इस विरोध प्रदर्शन की प्रमुख आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने धार्मिक शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए विरोध प्रदर्शनों को विद्रोह में बदलने का आह्वान किया है। सरकारी मीडिया ने बताया है कि तेहरान के पश्चिम में कराज क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने एक नगर पालिका भवन को आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर साझा फुटेज में तेहरान में भारी भीड़ और सड़कों पर आगजनी देखी गई। 28 दिसंबर से पूरे ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने जल्द ही राजनीतिक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी मौलवी शासन के अंत की मांग कर रहे हैं। ईरान के मानवाधिकार समूह के अनुसार अब तक लगभग 50 प्रदर्शनकारी और 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। लगभग 2,300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज वडोदरा में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर बाद 1:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में और तीसरा मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में होगा। उधर नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने दिल्ली को 196 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम केवल 145 रन पर ही सिमट गई। और महिला हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में एसजी पाइपर्स ने कल रांची में रांची बंगाल टाइगर्स को हराकर खिताब जीत लिया। निर्धारित समय में 1-1 गोल से बराबरी के बाद एसजी पाइपर्स ने शूटआउट में रांची बंगाल टाइगर्स को 3-2 से पराजित किया। एसजी पाइपर्स को 1.5 करोड़ रुपए, उपविजेता रांची बंगाल टाइगर्स को 1 करोड़ रुपए और तीसरे स्थान पर रही रांची रॉयल्स को 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर गिल्बर्टो डी सिल्वा के साथ कल फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया। ये ट्रॉफी 2 दिन तक दिल्ली में रहेगी। इसके बाद ट्रॉफी को 1 दिन के लिए गुवाहाटी ले जाया जाएगा। फीफा विश्व कप 11 जून को शुरू होगा। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार।
53वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है।
9 दिनों के पुस्तक मेले में 35 से अधिक देशों के 1,000 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मेले का उद्घाटन किया। मेले का विषय है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। इस मेले में थीम पैवेलियन मुख्य आकर्षण है, जिसमें सैन्य इतिहास पर 500 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं और 100 से अधिक विषय आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कला और संस्कृति, इतिहास, सिनेमा, जीवन, बाल साहित्य और राष्ट्रीय विरासत जैसे विषयों को कवर करने वाली पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण राष्ट्रीय ई पुस्तकालय है, जो एक प्रमुख डिजिटल पुस्तकालय है और 6,000 ई पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करता है। पुस्तक
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अवैध नौकरियों के लिए झांसा देकर म्यांमार ले जाए गए 27 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सामग्री नियंत्रण मानकों की कमियां स्वीकारी, भारतीय कानूनों के अनुपालन का आश्वासन दिया। ईरान के अधिकारियों ने अब तक के सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज वडोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।